बिलिंगल 2 लाख रुपए टिप के तौर पर लेकर एक्साइटेड होकर बोली, मैडम आप तो बहुत ज्यादा महान हैं। आपने मुझे 2 लाख रुपए टिप दे दिए। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी टिप है। मुझे जिंदगी में कभी किसी ने इतनी बड़ी टिप नहीं दी। मैडम यू आर सो ग्रेट, आपका दिल बहुत बड़ा है। जल्दी ही उस लड़की ने झलक की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए और खुद ब खुद आगे बढ़कर बोली, मैडम मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, आपका सारा सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। ये बोलकर वो खुद शॉपिंग किया हुआ सारा सामान उठाकर झलक की गाड़ी में रखने लगी थी। वहीं अब रणविजय का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि झलक यहाँ पर इस तरह से पूरे 2 लाख किसी लड़की को ऐसे ही दे देगी। उसकी हैरानी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। वो बार बार अपने आँख मलकर और सामने का नज़ारा देखकर यकीन करने की कोशिश कर रहा था। वहीं सिद्धार्थ बस शांति से हल्का सा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, वाकई काफ़ी सारी प्लानिंग करके इस बार तो मेरी ज़िंदगी में आई हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि आज शाम को तुम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे छुपा पाती हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कैसे अपने जुनून को ख़त्म करती हो। ये बोलकर कहीं ना कहीं इस वक्त सिद्धार्थ सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गया था। आकांक्षा भी सीधे जाकर सिद्धार्थ के पास पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी, लेकिन अभी भी उसके सामने बार बार झलक का इस तरह से पूरे 2 लाख रुपए उस बिलिंग काउंटर पर बैठी लड़की को देला याद आ रहा था। उसने अपने मन में ही एक कहानी बना ली और मुस्कुराकर सिद्धार्थ को देखकर बोली, सिद्धार्थ आपने देखा, जानबूझकर उस लड़की ने हमारे सामने उस बिलिंग काउंटर वाली लड़की को पैसे दिए। इसे वो मुझे दिखाना चाहती है कि अब वो मल्होत्रा परिवार का हिस्सा बनकर अमीर हो गई है। ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए किया है। हालांकि अंदर ही अंदर उसका दिल पूरी तरह से रो रहा होगा, अंदर ही अंदर उसे इस बात का पूरी तरह से पछतावा भी हो रहा होगा। वो लगातार इस तरह से बोलती जा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ ने बदले में उसे कोई जवाब नहीं दिया। आकांक्षा फिर बोली, सिर्फ पैसे से इम्प्रेशन दिखाने से कुछ नहीं होता। आदित्य ने ही उसे पैसे दिए होंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि 2 लाख रुपए जो उसने इस तरह से उस लड़की को दिए हैं वो बाद में उसे वापस ले लेंगे। ये सोचकर वो कुछ देर के लिए वहीं रुक गई थी, लेकिन तब तक झलक आराम से बाहर जा चुकी थी और वो बिलिंग गर्ल भी अपना आगे का काम कंटिन्यू करने लगी थी। इसी बीच जब सब लोग बाहर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी पर पूरी तरह से चाकू के निशान मारे गए थे। ये देखकर कहीं ना कहीं आदित्य का भी चेहरा काला पड़ गया था। वो बोला, ये काम किसी को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। क्या ज़रूरत थी इस तरह नुकसान पहुंचाने की? ऐसी 100 गाड़ियां तो मैं झलक के लिए आराम से खरीद सकता हूं। लेकिन फिर भी वो सोच में पड़ गया था कि आखिर ये हरकत किसने की होगी। वहीं अनामिका बोली, ज़रूर उस रणविजय ने ही इस तरह की हरकत की होगी ताकि हम लोगों को नीचा दिखा सके, लेकिन फिलहाल उसका ये प्लान भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तभी किसी ने कहा, गाड़ी का क्या है, बन जाएगी। जैसे ही अनामिका ने ये बात कही, गाड़ी की टेंशन से सभी लोगों का ध्यान हट गया। तभी अभय बोला, राइट, लेकिन अभी तो दोपहर का वक्त है और पेट में बहुत चूहे भी कूद रहे हैं, तो प्लीज़ कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट पर लेकर चलो, लंच करते हैं और फिर शाम का खाना पीना तो सिद्धार्थ की सगाई में करेंगे, लेकिन अब आज हम सब साथ में लंच करेंगे। ये सुनकर झलक बोली, चलो चिकन फ्राई वगैरह ट्राई करते हैं, जो उस ढाबे पर मिलता है आज वही खाते हैं। जैसे ही उसने ये कहा, तब अभय और कबीर दोनों का मुँह बन गया। कबीर बोला, भैया हम लोग इतने बड़े बिजनेस वाले, इतने बड़े आदमी होकर ढाबे पर खाना खाएंगे? नहीं नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। 5-स्टार होटल का खाना कैसा होता है ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, और इस तरह किसी ढाबे पर खाना पता नहीं ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन तभी आदित्य बोला, मैं चल रहा हूँ आपके साथ और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होगा। ये सुनकर झलक मुस्कुरा दी और फटाफट गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दिया। वहीं अब अभय कबीर के कानों में सरगोशी करते हुए बोला, क्या हम जानते नहीं हैं कि आदित्य भैया तो पूरी तरह से प्यार में डूबे हुए हैं? इस वक्त अगर हमें सड़क के किनारे भी कुछ खाने को मिल जाए तो वो वहाँ बैठकर भी खा लेंगे, लेकिन हमारा क्या यार, क्या बात है, भूख के मारे पेट में कबड्डी हो रही है। इतना शॉपिंग कराई, मैंने बोला भी था, लेकिन पता नहीं किस बेवकूफ ने गाड़ी का ये हाल कर दिया। इस तरह की बातें सुनकर कबीर मुस्कुराते हुए बाहर की ओर देखने लगा था। उसके ठीक बराबर में अनामिका एक साइड बैठी हुई थी, फिर कबीर और अभय बैठे हुए थे। तभी अभय ने अपना फोकस अनामिका की ओर नहीं बल्कि कबीर की ओर करते हुए उसे थोड़ा सा खिसकाते हुए कहा, यार सुबह से काम कर रहा हूँ तो जरा साइड में आकर बैठ जाना, मैं अनामिका जी के साथ बैठ जाता हूँ। एक पल के लिए उनके हाथ मेरे हाथों से छू जाएंगे, उनके लहराते हुए बाल मेरे चेहरे पर आएंगे, ये फीलिंग ही कुछ और होगी। कहीं ना कहीं ये सोचकर अभय एक अलग तरह की मस्ती भरी फीलिंग से भर गया था। वहीं कबीर उसकी बकवास बातें सुनकर मुंह बनाते हुए बोला, और कहा, आखिरकार मुझे जो थोड़ी सी जगह मिल रही है उसके बीच में भी रोड बन रहा है। ये बोलकर अभय दूसरी तरफ खिसक गया। कबीर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो उसकी वजह से बाहर की ओर देखने लगा था। अभय फिर हंसते हुए बोलने लगा, क्या यार, अनामिका जी के हाथों को टच करना, उनके बालों का चेहरे से टकराना, ये सब एक अलग ही फीलिंग होती है। ये सुनकर कबीर को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांट दिया और मन ही मन बोला, मैं भी कैसी बेकार बातें सुन रहा हूँ, और वैसे भी ये लड़की कोई मेरी थोड़ी है, मैं क्यों बेवजह ऐसे सोच रहा हूँ। ये सोचकर कबीर अपना मन मारकर चुपचाप बैठ गया। जल्दी ही झलक ने एक शानदार जगह पर गाड़ी रोक दी थी। भले ही वो जगह छोटी थी, लेकिन वहां साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया था। चारों तरफ बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ था। उसे देखकर आदित्य मन ही मन बोला, हर चीज का, हर जगह का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। जैसे ही झलक वहां पहुंची, ढाबिया के मालिक ने उसे पहचान लिया। वो तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, अरे बिटिया, तुम इतने दिनों बाद दिखाई दी हो, कहाँ चली गई थी, हमने तुम्हें कितना याद किया। ये सुनकर झलक मुस्कुराते हुए बोली, बस काका, थोड़ा फंस गई थी कहीं, फिलहाल आज आप मुझे अपना स्पेशल लंच खिलाइए। ये सुनकर ढाबे के मालिक ने हंसते हुए कहा, अरे बिटिया, बस तुम बैठो, अभी सब इंतजाम करवाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया। झलक जल्दी से आदित्य को लेकर एक जगह चारपाई पर जाकर बैठ गई थी। वहां ढाबे के माहौल के हिसाब से बैठने की पूरी व्यवस्था की गई थी, इसलिए सभी लोग आराम से अपनी अपनी जगह बैठ गए। जल्दी ही उस ढाबे पर झलक की पसंद का सारा खाना आ गया, जो वहां की स्पेशल डिश थी। पंजाबी चिकन, सैलेड, तंदूरी रोटी, तरह तरह की सब्जियां, रायता और कई स्वादिष्ट व्यंजन वहां मौजूद थे। उसे देखकर कबीर और अभय के मुंह में पानी आ गया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद यहाँ कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब देखकर तो वे दोनों हैरान रह गए और फटाफट खाना शुरू कर दिया। वहीं आदित्य ने पहले कभी इस तरह हाथों से बैठकर ढाबे का खाना नहीं खाया था, लेकिन गर्मा गर्म बिरयानी और बाकी व्यंजनों की खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। झलक जिस तरह से चटकारे लेकर खाना खा रही थी, उसे देखकर उसका भी मन उसी तरह खाने का करने लगा। फिलहाल जल्दी ही झलक ने देख लिया कि आदित्य ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है। झलक ने अपने हाथ से एक बाइट बनाई और प्यार से आदित्य को खिलाई।
बस आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही खाने का स्वाद उसके मुंह में घुला, उसकी सारी झिझक दूर हो गई। उसे डर था कि पता नहीं खाना कैसा होगा, लेकिन अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जल्दी ही सभी ने मिलजुल कर बहुत ही बढ़िया माहौल में खाना खाना शुरू कर दिया था और सभी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। वही अनामिका ने झलक को इस तरह चाव से खाते हुए देखा तो मुस्कुरा कर बोली, शाम के लिए भी थोड़ी सी जगह बचा कर रखना, शायद तुम भूल रही हो कि हमें शाम को सिद्धार्थ की सगाई में भी जाना है। दोस्तों, मैं जानते हो कि आप लोग इसका सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे, क्योंकि डेली आपको चैप्टर नहीं मिल पा रहे हैं। सो सॉरी यार, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, डेली चैप्टर आएंगे, और अभी स्टोरी एंड नहीं होगी। सिद्धार्थ का पागलपन अभी झलक के लिए बाकी है। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक स्टोरी आप लोगों को ज़रूर पड़ी होगी, आस्था की स्टोरी। अभी वो अब तेरे इश्क में के नाम से ऑडियो में आई है और इंस्टाग्राम पर उसके काफ़ी सारी रील भी वायरल हो रही हैं। मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, इंस्टा लिंक हो। आई होप आप लोग देखेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। https://www.instagram.com/real.dzefiehmebho/igshwdy2ksn5ghazo